उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओ, इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। हमें विश्वास है श्रोताओ कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में शामिल हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
चिंता और धोखा देता है धन, बीज का ये नाश करे दबा दे यीशु के वचन, दबा दे यीशु के वचन। लोभ लालच में डूबा है मेरा मन, जग की चिंता और धोखा दे देता है धन, बीज का ये नाश करे
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा एक बार मसीह नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका फिर से एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और मैं उन मित्रों का भी स्वागत करता हूँ जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम सब बाइबल की पुस्तकों में से अय्यूब नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार अय्यूब अपने मित्रों के द्वारा दोष लगाए जाने के बाद उन्हें उत्तर देता है और अपने आप को मैं और मैं, घमंड और अहम की बातों को दोहराता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक के साथ अय्यूब की पुस्तक से बातचीत करें, उसके जीवन से बातचीत करें, ताकि आज हम फिर से एक बार इस बात को जान सकें कि आप हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारी जरूरतों को आप समझते हैं। हाँ प्रभु, इसी के साथ हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं या किसी प्रकार के दबाव में हैं, आप उनकी भी सुधि लीजिए। इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे अध्याय 29 में अय्यूब अपनी जीवन गाथा सुनाता है। यह उसका अतीत है जिसे हम यह मेरा जीवन है कह सकते हैं। तो आइए आप मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय को निकाल लीजिए। उसके एक और दो पद में लिखा हुआ है, अय्यूब ने फिर अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। तब हम आगे पढ़ते हैं अय्यूब 29 अध्याय के 3 पद में, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उज्याला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। ये अय्यूब के समृद्ध के दिन थे। अय्यूब 29 उसके 4 पद में लिखा है, वे तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। यहाँ एक मनुष्य है जो युवा अवस्था से परमेश्वर की सेवा में है। अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय उसके 5-7 पद में हम पढ़ते हैं, उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धो देता था और मेरे पास की चट्टानों में से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था। जी हाँ, वह समृद्ध मनुष्य था। वह जिस वस्तु को छू ले वही सोना बन जाती थी। वह समृद्ध ही नहीं, प्रभावशाली मनुष्य भी था। अय्यूब 29 अध्याय उसके 8-9 पद में हम पढ़ते हैं, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह बंद किए हुए रहते थे। उसे देखकर बच्चे छिप जाते थे क्योंकि उसका प्रभाव ही ऐसा था। उसे आता देख वृद्ध भी खड़े हो जाते थे और उसे प्रणाम करते थे। उसके आते ही सब चुप हो जाते थे। हाकिम और प्रधान भी मुंह पर उंगली रख लेते थे। वे अय्यूब से कुछ सुनने की बात जोहते थे। हाकिम उसके समक्ष तब तक चुप रहते थे जब तक कि वह उन्हें बोलने की अनुमति न दे। कितना महान व्यक्ति है वो। अय्यूब 29 उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था। मेरे प्रियो, कस्तियों के उर नगर में समाज ने उसे सबसे बड़ा व्यक्ति चुना था। वह नगर का एक विशिष्ट जन था। अय्यूब 29 उसके 12 पद में लिखा है, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। वह वृद्धों को पेंशन देता था और कंगालों की सहायता भी करता था। अय्यूब 29 उसके 13 पद में लिखा है, जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। वह विधवाओं की भी सुधी लेता था। ओह, वह सबके लिए सोचता था। अय्यूब 29 अध्याय के 14 पद में लिखा है, मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। अय्यूब भलाई के काम करता था, मनुष्य उससे परामर्श लेता था। अय्यूब 29 अध्याय के 15 में लिखा है, मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। मेरे मित्र, वह अंधों के स्कूल का अध्यक्ष था। वह विकलांगों के आश्रम का अभिभावक था। कहने का मतलब है, अय्यूब एक विशिष्ट मनुष्य था। हमें आज ऐसे नागरिकों की कैसी आवश्यकता है। काश हमारे बीच में ऐसे लोग होते। अय्यूब 29 के 16 पद में लिखा हुआ है, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। दान देने से पूर्व वह भली भांति निरीक्षण करता था। आज विश्वासियों में इसकी गहन आवश्यकता है। अय्यूब केवल किसी वास्तविक स्थिति में ही सहायता करता था, सब समय नहीं। अय्यूब 29 के 17 पद में लिखा है, मैं कुटिल मनुष्यों की डाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। जी हाँ, वह नागरिक सदाचार, न्याय एवं व्यवस्था में विश्वास रखता था और उसके प्रभाव के कारण काम हो जाते थे। यह कैसा ही अद्भुत मनुष्य है। अय्यूब 29 अध्याय उसके 18 से 20 पद में हम पढ़ते हैं, तब मैं सोचता था मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। अय्यूब ने स्वयं से कहा, मैंने सब पा लिया है, अब मेरे पास सेवानिवृत्ति हेतु सब कुछ है। मैं अपने धरोदे में मर जाऊंगा। मैं अपने दिन रेत के कणों के समान बढ़ाऊंगा और वयोवृद्ध होकर मरूंगा। उसने सोचा उसके पास सब कुछ है, उसके पास एक अच्छा परिवार है, अच्छा स्वास्थ्य है। कोई कल्पना नहीं कर पाता था कि अय्यूब के पास कोई वस्तु नहीं है। अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय उसके 21 से 23 पद में लिखा है, लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ न बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेह के समान वर्षा करती थी। जैसे लोग बरसात की, वैसे ही मेरी भी बाढ़ देखते थे, और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वे मुंह पसारे रहते थे। वहां के नागरिक निर्णय लेने से पूर्ण अय्यूब से मार्गदर्शन खोजते थे। न्याय भी निर्णय लेने से पूर्व अय्यूब की अनुमति खोजते थे। अधिपति भी उसके पथ प्रदर्शन में चलते थे। निश्चय ही वह एक महान, प्रभावी एवं प्रतिष्ठित जन था। वे अय्यूब के एक एक शब्द का पालन करते थे। अय्यूब के पुस्तक 29 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, जब उनको कुछ आशा न रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ न सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहर कर बैठा करता था, और जैसा सेना में राजा या विलाप करने वालों के बीच शांति दाता, वैसा ही मैं रहता था। अय्यूब जीवन की परम ऊंचाइयों पर था। वह मान सम्मान, प्रभाव और समृद्धि का जीवन जी रहा था। वह धनी एवं बड़ा उद्योगपति था। वह एक आदर्श पुरुष था जिसकी अभिलाषा में आज मनुष्य प्रयासरत है। उसका जीवन भलाई का था। वह जानता था कि समृद्धि का जीवन क्या है। परंतु अय्यूब मिथ्या स्वर्ग में था। स्मरण करें कि उसने अध्याय 3 में क्या कहा था, पद 25 और 26 में, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे न तो चैन, न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। जी हाँ, उसे अपने धरौदे के उजड़ने का डर था, और वही हुआ भी। उसे डर था कि कहीं पलक झपकते ही उसकी धन संपत्ति चली ना जाए, और वही हुआ। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। उसके मित्रों ने भी उसे सहारा नहीं दिया, और सच तो यह है कि उन्होंने उसे और जोर का धक्का दे दिया। अय्यूब अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन कर रहा है। पद 14 में सुनिए कि वह क्या कहता है। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। मेरे न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। उसने 52 बार मैं और मेरा का प्रयोग किया है। हम पाप स्वीकारन और भूल चूक मानने की बात उसके मुख से नहीं सुनते हैं। हम उसमें मन की दीनता और पश्चाताप नहीं देखते हैं। अध्याय 30 में उसकी व्याथा और अभागेपन का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर अब अध्याय 29 समाप्त होता है, और हम अय्यूब अध्याय 30 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 30 उसके एक पद में लिखा है, परंतु अब जिनकी आयु मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी न जानता था। ध्यान दीजिए, मैंने अपनी पूर्व स्थिति का वर्णन किया है, परंतु अब ये धूर्त आकर मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उनकी बातें मेरे किसी काम की नहीं है। मैं इनके पितरों के बारे में कहता हूँ कि उन्हें तो मैं अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए भी काम पर नहीं रखता। आगे लिखा है अय्यूब 30 अध्याय के 2 और 3 पद में, उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता था। उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फांकते हैं। वह इन अयोग्य धूर्तों की निंदा करता है। आगे लिखा है अय्यूब 30 उसके 9 और 10 पद में, ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घिन खाकर दूर रहते या मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते हैं। वे अय्यूब के बारे में निंदा के गीत गा रहे थे। वह जानता था कि युवा लफंगों द्वारा निंदा का प्राप्त होना क्या होता है। मेरे मित्र, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं अय्यूब की बातें सुनते सुनते ऊब गया हूँ। पहले तो उसने अपनी महानता की चर्चा की, अब वह सहानुभूति के लिए कह रहा है, मैं कैसा महान मनुष्य था, पर अब देखो मेरी क्या दशा हो गई है। यह किसका दोष है? मेरे प्रियो, परमेश्वर को क्यों दोष दें? आज अनेक विश्वासियों का यही हाल है। परमेश्वर को दोष देना संभव है, परंतु बड़ी पवित्रता से। मुझे सब आशीष प्राप्त थी। मैं कितना सक्रिय था। मैंने मानव सेवा की, और अब मुझे देखो कि मैं कितने कष्ट में हूँ। जो भी हुआ इसलिए हुआ कि परमेश्वर भला है, इसलिए नहीं कि वह भला नहीं है। विश्वासी के जीवन में जो भी होता है इसलिए होता है कि परमेश्वर उसके जीवन में कोई लाभकारी कार्य कर रहा है। आइए देखें अंत में अय्यूब कहता है, अय्यूब 30 अध्याय के 31 पद में, इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। उसकी वाणी वीणा है। वह केवल विलाप का गीत ही गा सकता था। उसकी बांसुरी उसका रुदन था। वाणी और आंसू एक हो गए थे, अर्थात उसका गला घुट रहा था। रोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा था। उसकी दशा ऐसी हो गई थी। वह सहानुभूति खोज रहा था, और निश्चय ही ऐसे मनुष्य पर दया दर्शाना चाहिए। तथापि आप देखेंगे कि उसमें दीनता नहीं है। उसके जीवन में परमेश्वर असहाय कर दिया गया था। वह एक अभिमानी पुरुष था। वह परमेश्वर को सही कहने की अपेक्षा स्वयं को सही कह रहा था। सच तो यह है कि वह परमेश्वर को दोष दे रहा था। जी हाँ, अय्यूब की समस्या क्या थी? यह उसका घमंड था। घमंड ही के कारण तो शैतान का पतन हुआ था। अदन की वाटिका में भी यही पाप हुआ था। यह मनुष्य के मन का कैंसर है। घमंड का यह भयानक पाप हम सबके जीवन में है। मेरे मित्रों, अय्यूब अपना प्रतिवाद अब समाप्त करता है। अध्याय 31 में हम देखते हैं कि अय्यूब के प्रतिवाद का अंत है। उनका वाद विवाद टक्कर की प्रतियोगिता थी। अय्यूब के विपक्ष में उसके तीनों मित्रों ने सहकारी प्रयास किया उसे हरा दें, और वह अंततः स्वीकार कर ले कि वह बहुत बड़ा अर्थात महापापी है। उनका तर्क, जैसा हमने देखा, यह था कि यदि उसने महापाप न किया होता तो परमेश्वर उस पर ऐसा घोर कष्ट नहीं आने देता। वाद विवाद के तीन सत्रों के पश्चात वे हार गए, जिसका प्रमाण यही है कि सोपर ने अय्यूब को उत्तर नहीं दिया और अपनी बात कहता गया। उन्होंने उसे कोने में कर दिया था, परंतु वह लड़ते लड़ते कोने से निकल आया था। अपनी रक्षा में वह परमेश्वर को दोष देता था। परमेश्वर ने उसे दंड देकर अनुचित काम किया है। संभवतः मनुष्य सबसे बड़ा मूर्खता का काम करता है, वह अपने आप को उचित कहता है, जब परमेश्वर उस पर पाप का दोष डालता है। जी हाँ, जिस पल आप अपने आप को उचित ठहराना आरंभ करते हैं, उसी पल परमेश्वर आप पर उंगली उठाकर आपको बता देता है कि आप क्या हैं। बुद्धिमानी और उचित स्थिति तो यही है कि हम स्वयं को पूर्ण रूप से दोषी माने और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। जब हम ऐसा करते हैं, तब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। जो अपने आप को धर्मी कहे, उसके लिए केवल परमेश्वर का प्रकोप है, और वह जो स्वयं को दोषी ठहराए, उसके लिए केवल अनुग्रह है। यह हमें अपने जीवन में स्मरण रखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, दीनता एक ऐसा गुण है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं और मनुष्यों में देखना भी चाहते हैं। एक आधुनिक बॉक्सिंग प्रतियोगिता को पत्रिका में इस तथ्य के साथ छापा गया, दीनता की सजावट कुछ कामों में व्यावसायिक अनिवार्यता है, विशेष करके राजनीति और बॉक्सिंग में विजय पाने के लिए। जो इसकी अवहेलना करता है, उस पर जनता का क्रोध प्रकट होता है। हम चाहते हैं कि हमारे विजेता दीन बने। जब वे किसी अभागे को हमारे मनोरंजन के लिए चित कर दिया हो, तो जो लुइस और राकी मार्सियानो की नायक कहे, उसने अच्छी कुश्ती लड़ी। मेरे मित्रों, यह मानव स्वभाव है कि घमंड करें। यह बॉक्सरों का स्वभाव ही नहीं, यह मानव स्वभाव है। अय्यूब की पुस्तक से हमें शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर के समक्ष हम जैसे हैं वैसे ही हों। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके समक्ष अपना प्रतिवाद नहीं रख सकते। अपना बड़कपन या अपना बड़ा काम दिखाने वहां किसी काम का नहीं है। यह एक सर्वथा निश्चित बात है कि परमेश्वर ऐसा अभिमान तोड़ेगा। प्रभु का दिन प्रत्येक घमंड एवं अभिमान की बात का विरोध करेगा। अतः हमारे लिए यह बुद्धिमानी की बात है कि हम दीन एवं नम्र बने, क्योंकि नम्रता के द्वारा ही हम परमेश्वर और उसके उद्धार का उचित परिप्रेक्ष्य अंतर्ग्रहण कर पाते हैं। मेरे प्रियो, वेदी की पुकार में आगे आना आज एक प्रचलित अभ्यास है, परंतु वह उद्धार नहीं दिलाता। इसका कारण है कि अनेक जन घमंड के साथ सामने आते हैं। क्या आपने परमेश्वर के वचन में मन की दीनता के बारे में पढ़ा है कि परमेश्वर उसे कैसा स्वीकार्य कहता है? भजन संहिता 34 उसके 18 पद में व्यक्त है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जी हाँ, आप स्वयं देख सकते हैं कि वास्तविक मन फिराव की स्थिति यही है। हमें दाऊद की नाई इसे अंतर्ग्रहण करना है। दाऊद ने भजन संहिता 51 में अपना पश्चाताप और पाप स्वीकार किया है। भजन संहिता 51 के 17 में लिखा हुआ है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे मित्रों, परमेश्वर से व्यवहार करते समय आप उसके बराबर नहीं और न ही अपनी अकिंचन भलाई को उसके सामने रख सकते हैं। हमें यह स्पष्ट जान लेना है कि हम परमेश्वर के समक्ष मन की दीनता में आते हैं। यह संपूर्ण बाइबल की शिक्षा है। यशायाह नबी की पुस्तक 57 अध्याय उसके 15 पद में परमेश्वर के विषय में लिखा है, जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। दीन और नम्र मन की समस्या राजनेताओं या बॉक्सरों या किसी प्रकार के खिलाड़ी ही नहीं परंतु सब विश्वासियों की है और विशेष करके परमेश्वर के सब सेवकों की। मेरे विचार में हम कह सकते हैं कि अहंकार और आत्मभिमान परमेश्वर के सेवकों में प्रकट हो तो अत्यधिक अस्वीकार्य होते हैं। फिलिपियों की पत्री 2:7 में लिखा है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मेरे प्रियो, विश्वासी का घमंड इस प्रभु यीशु से कैसा असंगत है। घृणित, अहंकारी, स्वाभिमानी मसीही आचरण और मसीही सेवा जघन्य बात है। इससे अंतिम भाग में अय्यूब ग्रहण योग्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह स्वयं ही अपनी प्रशंसा में कहता है कि वह कैसा महान, प्रभावशाली, भला मनुष्य था और फिर वह अपनी दशा पर सहानुभूति की याचना करता है। अपने प्रतिवाद के अंत में भी वह स्वयं को ही अत्यधिक भला मनुष्य कहता है। मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आपने इस बात को जान लिया है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख नम्रता और दीनता से आए, क्योंकि वह चाहता है कि वह मुझे और आपको हमारी कमजोरियों से बाहर निकाले, हमारी सहायता करे। यदि आज हम सिर्फ मैं और मैं अहम की बातें करते हैं तो निश्चय जाने कि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। आइए आज हम अपने आप को दीन करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मेरी सहायता करें। तब आप निश्चय जाने पाएंगे कि वह आपके साथ में है और आप उस महान शांति को प्राप्त करने पाएंगे जिसे वह आपके जीवन में देना चाहता है। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको आयत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कुछ बीज गिरे कांटों में भी, कांटों ने उनको खत्म किया। कुछ बीज गिरे कांटों में भी, कांटों ने उनको खत्म किया। फल वो कभी चिंता और धोखा देता। है धन बीज का ये नाश करे।
वचन।